थे स्वर में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सभी आज का बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से भजन संहिता नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए श्रोता, आज के बाइबल अध्ययन की ओर ध्यान लगाएं और आत्मिक लाभ प्राप्त करें।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी कुशल पूर्वक हैं और परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मुझे विश्वास है कि आजकल जो हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का, इसके द्वारा आप अधिक से अधिक लाभ उठा रहे हैं। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता 139 में देखेंगे, जिसका विषय है परमेश्वर के गुणों का गुणगान। परमेश्वर के गुणों का गुणगान, प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। यह भजन आध्यात्मिक है क्योंकि इसमें सृष्टि में प्रकट परमेश्वर के गुणों का प्रकाशन है। इसमें परमेश्वर का सर्वज्ञान, सर्वव्यापिता और सर्वशक्ति का वर्णन है, अर्थात परमेश्वर सब जानता है, सब जगह उपस्थित रहता है और सर्वशक्तिमान है। उसके सामर्थ्य का अर्थ है कि वह सब कुछ कर सकता है। कभी कभी एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, क्या परमेश्वर इतनी बड़ी चट्टान बना सकता है कि स्वयं न उठा पाए? इसका उत्तर है कि परमेश्वर मूर्खता का काम नहीं करता है। यह भजन हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर देता है। परमेश्वर का सर्व ज्ञान, आइए हम देखेंगे भजन संहिता 139 उसके एक पद में, जहाँ पर लिखा है, हे यहोवा तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मित्रों, आपके मुंह में तो कोई बात आई परंतु मनुष्य की उपस्थिति में आपने कुछ कहा नहीं, परमेश्वर ने उसे जान लिया। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता। भजन संहिता 139 उसके 5 और 6 पद में लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। परमेश्वर यह कैसे करता है मैं नहीं जानता, और भजनकार कहता है कि वह भी नहीं जानता। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। परमेश्वर का सर्व ज्ञान भय का कारण नहीं, सांत्वना की बात है। उसने मेरा उद्धार किया परंतु वह मुझे जानता भी है, यही तो आश्चर्य की बात है। आप कुछ लोगों से मेल बढ़ाते हैं परंतु वे आपको निराश करते हैं। आप सोचते थे कि आप उन्हें जानते हैं परंतु नहीं, आप उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। परमेश्वर हमें जानता है, तथापि वह हमारा उद्धार करता है। परमेश्वर कैसा महान है। परमेश्वर दाऊद को जानता था और दाऊद ने उसे निराश किया, परंतु परमेश्वर दाऊद के विश्वास को जानता था जो हम नहीं जानते। वह दाऊद का मन देख सकता था कि उसमें चूकने वाले विश्वास के पीछे अचूक विश्वास है। प्रभु यीशु जानता था कि शमौन पत्रस आगे क्या करेगा। वह तो यह भी जानता था कि यहूदा उससे विश्वासघात करेगा, यद्यपि हम समझ नहीं पाते। यह परमेश्वर का सर्व ज्ञान है, वह सब कुछ जानता है। अब हम आगे देखेंगे परमेश्वर के सर्वव्यापिता। आप कहीं भी जाएं, आप परमेश्वर से बच नहीं सकते। भजन संहिता 139 उसके 7 और 8 पद में लिखा है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो तू वहां है। अधोलोक नरक नहीं है, यह वह स्थान है जो मनुष्य ने ना तो देखा है और ना ही उसके बारे में जानता है। परमेश्वर हर जगह है। भजन संहिता 139 के 9 पद में लिखा है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं। आप चांद पर भी परमेश्वर से बच नहीं सकते। चांद पर जाने वाले पहले 3 अंतरिक्ष यात्रियों ने बड़े दिन की रात उत्पत्ति अध्याय एक पढ़ा। मेरे मित्रों, आप चांद पर भी परमेश्वर से बच नहीं सकते हैं। भजन संहिता 139 उसके 10 से 12 पद में लिखा है, तो वहाँ भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधियारा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझ से न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। मेरे प्रियो, यहाँ पर मुझसे किसी ने पूछा, क्या हमें परमेश्वर के समक्ष पापों का सविस्तार अंगीकार करना चाहिए? मैंने कहा, क्यों नहीं, वह तो वहाँ था ही। जब आपने पाप किया तो उससे कहने में क्या झिझक, उससे कह दें कि आप उसे पाप मानते हैं। मेरे प्रियो, अपने पाप स्वीकार करने का अर्थ है परमेश्वर से सहमत होना। परमेश्वर कहता है कि वह पाप है और आप स्वीकार करते हैं कि वह पाप है। भजन संहिता 139 के 13 पद में लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। जिस पल हमारी माता हमें गर्भ में धारण करती है, उसी पल से हम संपूर्ण जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। भजनकार इस तथ्य को अगले पद में अधिक बल के साथ कहता है, जिसे हम भजन संहिता 139 के 14 पद में पढ़ते हैं, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। जी हाँ, परमेश्वर हर जगह है और मनुष्य एक ऐसा उत्तम प्राणी है जो लगातार परमेश्वर का ध्यान आकर्षित किए रहता है। भजन संहिता 139 उसके 15 और 16 पद में आगे लिखा है, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझ से छिपी न थी। तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंक जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। दाऊद कहता है कि उसके शरीर की रचना से पहले माँ के गर्भ में वह एक पूर्ण मनुष्य था। यहाँ यह कहा गया है कि स्त्री के गर्भ धारण पर ही मनुष्य पूर्ण मनुष्यत्व में होता है। आज गर्भपात के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैंने एक मुक्त विचारवादी से सुना है कि बाइबल में गर्भपात के विषय कुछ नहीं कहा गया है, अतः इस विषय में हमारा विवेक जो कहे सो हम करें। परंतु सच तो यह है कि बाइबल में इस विषय पर कहने को अवश्य ही कुछ है। यह एक स्पष्ट संदर्भ है। दाऊद कहता है कि जब उसके शरीर की रचना हो रही थी, तब वह पूर्ण मनुष्यत्व में था। परमेश्वर के पास उसके लोगों का जन्म से पूर्व ही पूरा नक्शा होता है। अब एक बात ध्यान से सुन लें कि गर्भपात हत्या है, जब तक कि वह माँ की जान बचाने को न किया जाए। अपने आप को छिपाने के लिए गर्भपात करना या उत्तरदायित्वों से बचने के लिए गर्भपात करवाना एक भयानक और पार्श्विक अपराध है। मुझे दोष न दें, दाऊद ने लिखा है और पवित्र आत्मा ने इसकी घोषणा की है, तो आप उन्हें दोष दें। यदि हम संपूर्ण बाइबल को माने तो वहाँ प्रत्येक समस्या का समाधान है। बाइबल सदैव ही प्रचलित अर्थ प्रस्तुत नहीं करती है। अच्छा होगा कि हम परमेश्वर के दृष्टिकोण से इन बातों को समझें। मित्रों, अब हम आगे देखते हैं परमेश्वर की सर्वशक्ति। हम भजन संहिता 139 उसके 17 और 18 पद में पढ़ते हैं, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। भजन संहिता 139 उसके 19 पद में लिखा है, हे परमेश्वर निश्चय तू दुष्ट को घात करेगा, हे हत्यारों मुझसे दूर हो जाओ। इस भजन में दुष्ट और धर्मी दोनों का उल्लेख है। परमेश्वर कहता है कि वह दुष्ट को दंड देगा और अपने लोगों की प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर की स्तुति करो कि वह सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थी है और सर्वव्यापी है। मित्रों, इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 139 समाप्त होता है। और हमने देखा है कि भजनों का यह समूह है जो अंगूर के गुच्छे के समान परस्पर संबंधित है। भजन 140 में हम आगे देखते हैं। 140 का संबंध आध्यात्मिक भजन 139 से नहीं है। इस भजन में ख्रिस्त विरोधी के राज्य में परमेश्वर के भक्तों की दुर्दशा का उल्लेख किया गया है। ख्रिस्त विरोधी अर्थात मसीही विरोधी झूठा मसीहा और पाप का मनुष्य होगा। यह दाऊद की प्रार्थना है जिसमें वह सुरक्षा की विनती करता है, क्योंकि उसे दुष्टों ने घेर रखा है। इस समय दाऊद अत्यधिक तनावग्रस्त था, क्योंकि राजा शाऊल उसकी जान का दुश्मन बना हुआ था। वह एक उत्पात करने वाले मनुष्य का प्रतीक है, जिसके विषय पौलुस दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय में लिखता है। यह भजन आज आपके और मेरे लिए अर्थपूर्ण है। हम भी यह प्रार्थना कर सकते हैं। आप मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 140 उसका 1 पद। लिखा है, हे यहोवा मुझको बुरे मनुष्य से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर। इस पद में ख्रिस्त विरोधी को उपद्रवी पुरुष कहा गया है। यूहन्ना कहता है कि अनेक ख्रिस्त विरोधी आएंगे। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय के 18 पद में लिखा है, तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीही विरोधी उठ खड़े हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा संपर्क कभी न कभी किसी दुष्ट मनुष्य से हुआ है। दाऊद की प्रार्थना है कि परमेश्वर उसे दुष्टों से बचाए। सेवा के समय मेरी भी यही प्रार्थना रही है, हे परमेश्वर मुझे दुष्टों के प्रभाव और प्रभुता से बचा कर रखना। सेवक के लिए किसी एक मनुष्य या किसी गुट के प्रभाव में आ जाना अति संभव होता है और यह संकटपूर्ण है। भजन संहिता 140 के 2 और 3 पद में लिखा है, क्योंकि उन्होंने मन में बुरी कल्पनाएं की हैं, वे लगातार लड़ाइयां मचाते हैं, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाक का सा विष रहता है। रोमियो के पत्री 3 अध्याय उसके 10 से 18 पद में पौलुस मानव जाति के लिए ऐसा ही कहता है, उनकी जीभ में विष है। जीभ परमाणु बम की नाई विनाशकारी है। जीभ किसी भी प्रतिष्ठा को नष्ट करके उसके जीवन पर कालिक पोत देता है। भजन संहिता 140 के 4 पद में कहता है, हे यहोवा मुझे दुष्ट के हाथों से बचा ले, उपद्रवी पुरुष से मेरी रक्षा कर, क्योंकि उन्होंने मेरे पैरों को उखाड़ने की युक्ति की है। यह दाऊद की प्रार्थना है और महाक्लेश में इसराइल के भक्त यही प्रार्थना करेंगे। आज अनुग्रह के युग में यह मसीही विश्वासियों की प्रार्थना नहीं है। महाक्लेश में फंसे व्यवस्था पालकों के लिए परमेश्वर के दंड और क्रोध की प्रार्थना को मैं तर्कहीन नहीं समझता हूँ। भजन संहिता 140 उसके 8 से 10 पद में लिखा है, हे यहोवा दुष्ट की इच्छा को पूरी न होने दे, उसकी बुरी युक्ति को सफल न कर, नहीं तो वह घमंड करेगा। मेरे घेरने वालों के सिर पर उन्हीं का विचारा हुआ उत्पात पड़े, उन पर अंगारे डाले जाए, वे आग में गिरा दिए जाएं और ऐसे गढ़ों में गिरे कि वे फिर उठ न सकें। भजनकार दुष्ट ख्रिस्त विरोधी के विरुद्ध प्रार्थना कर रहा है। हमें इस प्रार्थना की अपेक्षा रोमियो के पत्र 12 अध्याय उसके 19 से 21 पद का पालन करना है। लिखा है, हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। दूसरे शब्दों में अपने मन में कड़वाहट ना आने दो, बैर और बदले की भावना में न बह जाओ, क्योंकि इससे आप परमेश्वर की संगति से दूर हो जाएंगे। परमेश्वर सब संभाल लेगा। यह मेरा अनुभव है कि जब हमने अपने हाथ अलग रखे तब परमेश्वर ने सेवा में बाधा डालने वालों के साथ उचित व्यवहार किया। बदला लेना परमेश्वर का काम है। उसके हाथ में सब कुछ छोड़ दें और बुराई करने वाले के लिए उनके साथ भलाई करें। परमेश्वर हमें असामान्य स्थिति में रखता है। भजन संहिता 140 उसके 11 पद में लिखा है, बकवादी भी पर स्थिर नहीं होने का, उपद्रवी पुरुष को गिराने के लिए बुराई उसका पीछा करेगी। विश्वास के मार्ग का त्याग न करें तो निश्चय ही विजयी होंगे। पहला यूहन्ना के पत्री 5 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजयी जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। दुष्ट जीव स्थिर नहीं रहेगी और न ही अस्तित्ववान होगी। झूठ एक दिन पकड़ा जाएगा। शैतान आरंभ ही से झूठा है और आज उसके गुर्गे उसके चेले उसी के चरण चिन्हों पर चल रहे हैं, एक दिन वे सब पकड़े जाएंगे। भजन संहिता 140 यहाँ पर समाप्त होता है। भजन संहिता 141 में हम आगे देखेंगे, जिसका विषय है दुष्टता से बचाए जाने की प्रार्थना। यह दाऊद का भजन है जो उसके निजी इतिहास से संबंधित है। वह आपातकालीन संदेश भेजता है। यह प्रार्थना संभवतः किसी अज्ञात अनुभव का परिणाम है, शायद जब वह शाऊल से जान बचाकर भाग रहा था, और इसका संदर्भ बुराई से इसराइल के अंतिम संघर्ष से है, परंतु इसमें आपके और मेरे लिए भी संदेश है। तो आइए हम भजन संहिता 141 उसके एक और दो पद को पढ़ें। लिखा है, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझको पुकारू तब मेरी ओर कान लगा, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। किसी टीकाकार ने कहा है, दाऊद प्रार्थना से प्रेम करता था। वह एक महान प्रार्थनाशील मनुष्य था। वह कहता है कि प्रार्थना एक मनमोहक सुगंध है, और यह सच भी है। आज जब हम प्रार्थना करते हैं और मसीह के नाम की स्तुति करते हैं, तो वह वैसे ही मधुर सुगंध जैसी हारून के द्वारा सोने की वेदी पर धूप जलाने से मंडप में उठती है। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप ठहरे। प्रार्थना को सुगंध धूप होने के लिए आज्ञाकारी जीवन की आवश्यकता है। प्रभु यीशु ने अति स्पष्ट किया कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुने और उत्तर दे, तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना होगा। यह सोचना एक बड़ी भूल है कि हमारा जीवन कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा। योहन्ना के पत्र 14 अध्याय उसके 14 और 15 पद में प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। परंतु वह आगे कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अतः स्पष्ट है कि यदि आप चाहते हैं कि वह आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे, तो आपको आज्ञाकारी होना है। हमें मसीह के नाम में प्रार्थना करना है, जी हाँ, परंतु हमें उसके साथ वैसा ही जीवन भी जीना है। भजन संहिता 141 उसके तीन पद में लिखा है, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे वचन और मेरा जीवन परस्पर विरोधी न हो। उसने कटु अनुभव से यह सीखा था। हमारी प्रार्थना यह होना है, मेरी प्रार्थना रविवार को कुछ हो और सोमवार को मेरा आचरण कुछ और हो, ऐसा ना होने दे। भजन संहिता 141 उसके 4 और 5 पद में लिखा है, मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। इस दुष्ट संसार में अनेक जन जीव का अपहरण करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे बुराई से कंधा रगड़ते हैं। कहा जाता है कि नाव को सागर में होना है, परंतु सागर नाव में हो तो यह एक दुर्घटना है। जब मनुष्य इस संसार में रहकर शैतान की संतान हो, तो वह परमेश्वर से आशा न करे कि रविवार की आराधना लें, वह उसकी प्रार्थना सुने। भजन संहिता 66 उसके 18 पद में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो परमेश्वर मेरी न सुनता। परमेश्वर दुष्ट की प्रार्थना नहीं सुनता है। याकूब कहता है 5 अध्याय के 16 पद में, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। और योहन्ना कहता है 1 योहन्ना 3 अध्याय के 22 पद में, जो कुछ हम मांगते हैं वह उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। दाऊद की प्रार्थना थी कि परमेश्वर उसके होठों की चौकसी करे। वह अपना मन दुष्टता में नहीं लगाना चाहता था। यदि हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समक्ष प्रभावकारी हो, तो हमें दाऊद के उदाहरण पर चलना होगा। भजन संहिता 141 उसके 8 और 9 पद में लिखा है, परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं, मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने न दे। मुझे उस फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनंत कार्यों के जाल से मेरी रक्षा कर। दाऊद प्रार्थना करता है कि वह दुष्टों के जाल में न फंसे। शैतान हमें हर प्रकार की युक्ति से ठोकर खिलाना चाहता है। दुर्भाग्य से हम उसके जाल को समझ नहीं पाते हैं। हम तो कुरिन्थ के सांसारिक विश्वासियों के तुल्य भी बुद्धिमान नहीं हैं, जिनसे पौलुस ने कहा दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 2 अध्याय उसके 11 पद में, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम में से कुछ तो शैतान की युक्तियों से अनभिज्ञ ही हैं। ओह मेरे मित्रों, हम दुष्टता से मुक्ति पाने की प्रार्थना करें कि हमारी प्रार्थना सामर्थ्य हो। मेरे प्रियो, भजन संहिता 141 यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आगे देखते हैं भजन 142, जिसका विषय है दाऊद के कष्टों का आरंभ। ध्यान दीजिए, यह एक मुश्किल भजन अर्थात निर्देशन का भजन है। इस भजन से हम कुछ सीख सकते हैं। यह भी दाऊद की महान प्रार्थना है। इस प्रार्थना के समय वह कहाँ था, इसका उपरिलेख स्पष्ट करता है कि वह गुफा में था। आइए हम भजन संहिता 142 उसके 1 पद को पढ़ें। लिखा है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। हम यह तो नहीं जानते कि वह किस गुफा में छिपा हुआ था, परंतु पहला शामुएल की पुस्तक 24 अध्याय में लिखा है कि वह एनगदी के जंगल में था, जो छुपने के लिए बहुत अच्छा था। वह अदुलाम की गुफा भी है जहां दाऊद पहली बार छिपा था, जब वह राजा शाऊल से बचकर भागा था। मेरे विचार में इस भजन की रचना के समय वह उसी गुफा में था। हम जानते हैं कि यही वह स्थान है या समय था जब जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब उसके साथ इकट्ठे हुए। पहला शामुएल की पुस्तक 22 अध्याय के 2 पद में हम इसे पाते हैं। इस समय उसके पास 400 मनुष्य आए थे। आइए देखें इस समय उसकी प्रार्थना क्या है। भजन संहिता 142 के 2 पद में लिखा है, मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। दूसरे शब्दों में दाऊद ने अपना जीवन और हृदय परमेश्वर के समक्ष खोलकर रख दिया। हमें ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना में किसी बात के आसपास भटकना या प्रार्थना में तर्क करना या तर्क प्रकट करना या व्यर्थ की बातें करना उचित नहीं है। हमें काम की बात करना चाहिए और परमेश्वर को अपने जीवन की सब बातें बता देना चाहिए। दाऊद कहता है, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। मेरे मित्रों, आप उससे अपने परीक्षाओं की चर्चा कर सकते हैं, आप उसे सब कुछ कह सकते हैं। फिनलोन ने इसी विषय पर एक पुस्तक लिखी, टेल गॉड अर्थात परमेश्वर से कह दो। परमेश्वर से अपने मन की सब बातें कह दो, जैसे कोई अपने प्रिय मित्र से अपने सुख दुख को बांटता है। उसे अपने परेशानियां सुनाओ कि वह आपको सांत्वना दे। उसे अपने आनंद सुनाओ कि वह आपको दीनता प्रदान करे। उसे अपनी अभिलाषाएं बताओ कि वह उन्हें पवित्र करे। उसे अपने अंदरूनियां बताओ कि वह आपको विजय प्रदान करे। उससे अपनी परीक्षाओं की चर्चा करो कि वह उनसे रक्षा करे। उससे अपने दिल के दुख सुनाओ कि वह उन्हें चंगा करे। परमेश्वर के प्रति अपनी उदासीनता, बुराई की भ्रष्ट लालसा, अपनी अस्थिरता व्यक्त करें। उससे बताएं कि आपका स्वार्थ आपको अन्यों के प्रति अन्यायी बनाता है, निस्सारता आपको कैसे अनिष्ट बनाती है, घमंड आपको कैसे छल में डालता है। सब कुछ और सब कुछ कह दें। यदि आप इस प्रकार अपनी सब दुर्बलताएं, आवश्यकताएं, परेशानियां उसे सुना देंगे तो आपके पास प्रार्थना में शब्दों की कमी नहीं होगी। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। आपका विषय कभी भी समाप्त नहीं होगा, वह लगातार नया होता जाएगा। जिन मनुष्यों में परस्पर गुप्त बातें छिपी न हो तो उनके पास चर्चा के विषयों का अंत नहीं होता है। वे अपने वचनों को तौलते नहीं है क्योंकि छिपाने को तो उनके पास कुछ होता ही नहीं है और न ही उन्हें चर्चा के विषय खोजने की आवश्यकता पड़ती है। वे खुले दिल से बात करते हैं, वे जो सोचते हैं कह देते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के साथ ऐसी अनौपचारिक आवधित प्रार्थनाएं करते हैं। मेरे मित्रों, दाऊद का सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ ऐसा ही संबंध था और उसने परमेश्वर से अपने मन की सब बातें कह दी। ध्यान दे, दाऊद कहता है, मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। दाऊद युवावस्था में भी इसराइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था। राजा शाऊल ने अपने पागलपन में उस पर भाला चलाया कि उसे दीवार में गाड़ दे, परंतु दाऊद बच गया और वहां से भाग गया। उसने कहा कि उसे तीतर की नाई खोजा जा रहा है। वह जान बचाने के लिए भागता रहता था और ऐसी स्थिति में उसने यह भजन लिखा था। उसने परमेश्वर को पुकारा। भजन संहिता 142 के 3 पद में लिखा हुआ है, तब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। वे दाऊद को पकड़ने के प्रयास में थे। दाऊद ने परमेश्वर से सहायता मांगी और परमेश्वर ने उसका मार्गदर्शन किया। तब हम भजन 142 के 4 पद में पढ़ते हैं, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। शाऊल का महल त्यागते समय दाऊद की यह दशा थी, परंतु आगे चलकर उसे 400 सहयोगी मिले। वह जानता था कि यह परमेश्वर की ओर से था। भजन 142 के 5 पद में लिखा है, हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है, मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। हमें यहाँ दो बातें देखना है। वह गुफा में छिप गया, अन्यथा शाऊल उसे मार डालता। आप कहेंगे कि वह तो परमेश्वर पर विश्वास करता था। जी हाँ, परंतु परमेश्वर चाहता था कि वह अपने शुद्ध बुद्धि भी काम में ले। मेरे प्रिय मित्रों, आज मेरे और आपके लिए भी ऐसा ही सौभाग्य है कि हम अपनी सारी बातें परमेश्वर पर छोड़ दें, उससे सब कुछ कह दें और उसके निकटता में आ जाएं, क्योंकि वह चाहता है कि हम बच जाएं, हम बचाए जाएं और उन सारे आशीषों को प्राप्त करें जिसे परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है, जिस प्रकार से उसने दाऊद को दिया। मेरे प्रियो, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, तेरी शान में मसीहा, तेरी आन में मसीहा, पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
ओ जलाल इब्ने दाऊद, तेरे नाम